ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಮಯಂ ತದಾತಿ ಸ್ವಪದಂತಿಕಾಂ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಪಿಛಲಿ ಬಾರ್ ಹಮ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ವಿಷ್ಣುದೇವ್ ಕಾ ಮಹಿಮಾ ಬತಾಯಾ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ಹಮ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ಕಾ ಯೂಸ್ ಕರ್ ರೇ ಹೇ ತೋ ಆಪ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ವೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಾ ಅಂಶ ಪಡೂಂಗಾ ಔರ್ ಫಿರ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಹಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕರೆಂಗೆ. ಸೋ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಅಪ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮೇಕ್ ಜಗಾ ಲಿಖೇ ಹೇ ಚೇತನ್ ಚರಿತಾಮೃತ ಮೇ ಔರ್ ಕುಛ ಶ್ಲೋಕ ಕಾ ಭೀ ರಿಪ್ಲೈ ಹೇ. ಜೈಸೆ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಕೋ ಕಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛಾ ಥಾ ಕಿ ಕಿಸಿ ವೈಷ್ಣವ ಕೋ ಕೈಸೆ ಪಹಚಾನಾ ಜಾಯೆ. ಐಸೆ ತೋ ಯೇ ಪ್ರಶ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೋ ಭೀ ಪೂಛಾ ಗಯಾ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ಹರ ಸಮಯ ಪರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಲಗ ಅಲಗ ಉತ್ತರ ದೇತೆ ಥೆ. ಲೇಕಿನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋ ಭೀ ಐಸೆ ಕೈ ಬಾರ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛೆ ಗಯೆ ಥೆ. ತೋ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋ ಏಕ್ ಬಾರ ಯೇ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛಾ ಥಾ, ಪ್ರಭುಪಾದ ನೇ ಉನ್ಕೋ ಕಹಾ ವೈಷ್ಣವ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್. ಏಕ್ ವೈಷ್ಣವ ಜೊ ಹೋತಾ ಹೇ ವೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋತಾ ಹೇ, ವೋ ಸಜ್ಜನ ಹೋತಾ ಹೇ ವೈಷ್ಣವ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉನ್ಮೇ ವೋ ಸಾರೆ ಗುಣ ಪಾಯೆ ಜಾತೆ ಹೇ ಜೊ ದೇವತಾ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶ್ಲೋಕ? ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ, ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ. ಜಿಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಅಕಿಂಚನ ಭಕ್ತಿ ಹೋತಿ ಹೇ ತಸೇ ಸರ್ವೇ ಗುಣ ಸಮಾಸ ಹೋತೆ ಸುರ, ಉಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇ ದೇವತಾ ಕೆ ಸಾರೆ ಗುಣ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹೋತೆ ಹೇ. ಕೈ ಬಾರ ಹಮ ಯೇ ಬಾತ್ ಸೋಚತೆ ಹೇ ಔರ್ ವಿಚಾರ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ವಿಚಾರ ಕರತೆ ಹೇ ಕಿ ಮುಜ್ಮೇ ತೋ ಕಭಿ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಕ್ತಿ ಆಯೇಗಿ ನೀ, ಔರ್ ಮುಜ್ಮೇ ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ದೇವತಾಂ ಕೆ ಗುಣ ಆಯ ನೀ ಸಕತೆ. ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೋ ಹೋತಾ ಹೇ ಜೋ ಕುಛ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ತಾ, ಕುಛ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೇತಾ ಹೇ ಔರ್ ಫಿರ್ ವೋ ಸಂತುಷ್ಟ ರಹತಾ ಹೇ ಔರ್ ಫಿರ್ ಅಪ್ನಾ ಕಾಮ್ ಮೇ ಲಗ್ ಜಾತಾ ಹೇ, ಉಸ್ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಔರ್ ದೂಸರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೋ ಹೋತಾ ಹೇ ಕಿ ಜೋ ಏಕ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಏಕ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಏಕ್ ವೋ ಆಗೇ ಬರ್ತಾ ಹೀ ಜಾತಾ ಹೇ ಸೀಖನೆ ಮೇ, ಔರ್ ವೋ ಬಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಆಪ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಸಮಾಜ ಮೇ ಜೋ ಸಫಲ್ ಲೋಗ್ ಹೋತಾ ಹೇ ನಾ, ಬಡೇ ಸಫಲ್ ಲೋಗ್, ಜೈಸೆ ಆಪ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್, ಅಗರ್ ಆಪ್ ಕೋಯಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ತೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾ ಬೋಲ್ಬಾಲಾ ಜಾದಾ ಹೋತಾ ಹೇ, ತೋ ಇಸ್ಮೇ ಜೋ ಖಿಲಾಡಿ ಹೋತೆ ಹೇ ಯೇ ಖಿಲಾಡಿ ಹಜಾರೋ ಖಿಲಾಡಿಯೋ ಮೇ ಸೇ ಚುನೆ ಹುವೆ ಹೋತೆ ಹೇ. ಭಾರತ್ ಕಿ ಓರ್ ಸೇ ಖೇಲ್ ಮೇ ಭಾಗ ಲೇನಾ ಯೇ ಖಿಲಾಡಿಯೋ ಕೆ ಲೈಫ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾನಿ ಜಾತಿ ಹೇ. ಕಿಸಿ ಭೀ ಖೇಲ್ ಕಾ ಖಿಲಾಡಿ ಅಗರ್ ಉಸ್ಕೋ ಭಾರತ್ ಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಮೌಕಾ ಮಿಲ್ ಗಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಉಸ್ಕಾ ಜೀವನ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಸಪ್ನಾ ಹೋತಾ ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಪಹುಂಚನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಿತ್ನಾ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ, ಕಿತ್ನಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ. ಅಚ್ಚಾ ಉದಾಹರಣೆ ದೇನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ बड़ी मेहनत से काम करना पड़ता है, अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, और बैठे नहीं रह सकते, तब जाके उस स्थान पर पहुंचते वो लोग। तो जो सफल लोग होते हैं, जैसे अंबानी है धन के मामले में, तो वह भी सब इंडिया में सब जगह उसकी बोलबाला है धन के लिए। अगर भाई सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वो तो एक ही व्यक्ति है। तो ये लोग टाइम का वेस्ट नहीं करते, वो बिगाड़ते हैं, वो बहुत बहुत ही ज्यादा उनको आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। तो इस प्रकार से भक्त लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझ में तो इस प्रकार के गुण आ ही नहीं सकते, मुझ में तो भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती, या फिर मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारी मानसिक बाउंड्रीज है, फेंसिंग बना के रखी हमने, बस ये हम हमारा इतना हो गया, बस मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगा, ये ठीक है हमारा का जब तो हो रहा है। भगवान बोला है क्या 24 घंटा मेरे संपर्क में रहो? तो होता है ना, देखो मैं सुबह उठ के माला का जप कर लेता हूँ, ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत लेक्चर दे देता हूँ या सुन लेता हूँ, या फिर प्रचार में थोड़ा बहुत भाग दे देता हूँ, प्रसाद खा लेता हूँ, फैमिली का मेंटेनेंस कर रहा हूँ, बस हो गया कृष्ण भक्ति। अभी इससे अधिक क्या कर सकता हूँ मैं? अगर ये प्रश्न आप अपने आप को पूछो, किसी को दिखाने के लिए आप अकेले में बैठो और पूछो अपने आप को कि क्या आप इससे अधिक कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा सोचोगे तो आपको भगवान बुद्धि देंगे कि हाँ मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन समस्या होती है हमारी चाहने नहीं चाहने में। भक्तिविनोद ठाकुर, हम ये नहीं कहते कि सब भक्तिविनोद ठाकुर जितने महान बन सकते हैं, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर वो जैसे मैं लास्ट टाइम भी शायद आपको बताया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब अंग्रेजों के समय में गवर्नर के समान उनको माना जाता था। आपके अभी के जो गवर्नर की जो सत्ता है ना, जो और उनके पास जो पावर होते हैं, ऐसे पावर उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होते थे। तो इतनी बड़ी अवस्था पर भक्तिविनोद ठाकुर काम करते थे और उनके कार्य शैली को, कार्य प्रणाली को अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे। मैंने एक बार आपको पहले बताया था कि जो अंग्रेज लोग, भारत के लोग नहीं, जो अंग्रेज लोग 3 दिन में नहीं कर सकते थे, वो भक्तिविनोद ठाकुर 3 घंटे में करके देते थे। वो लोग तो बुद्धिशाली थे ही, विदेशी लोग, अंग्रेज लोग तो बड़े बुद्धिशाली थे, लेकिन ये 3 घंटे में 3 दिन का काम भक्तिविनोद ठाकुर करके दिखा देते। और इतना सब करते करने के बाद भी भक्तिविनोद ठाकुर नाम हट का स्थापना किया, प्रचार किया, भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढा, स्थापित किया। भक्तिविनोद ठाकुर इतने सारे ग्रंथ लिखे और इतना प्रचार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूरी फिलोसॉफी को रिएस्टैब्लिश किया। तो ये सब कार्य उन्होंने किए, गृहस्थ थे और उनके फैमिली मेंबर्स की संख्या अभी तो 7-8 लोग थे उनके फैमिली में। 8 लोग के खाने का भी आप समझ सकते हो ना कि रहने खाना सबका व्यवस्था करना पड़ता है ना, उनके रहने की व्यवस्था, घर भी बड़ा चाहिए, खाने की भी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है। अब आप कहेंगे शायद वो तो उस समय तो सब कुछ सस्ता था, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वो सब एक साथ ही चलता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो आपकी आमदनी भी बढ़ती है, तो सब कुछ बढ़ता है धीरे धीरे। हाँ ये अवश्य है कि कलयुग जैसे बढ़ता है वैसे जीना मुश्किल होता जाता है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर एक अच्छा उदाहरण दे रहे थे गृहस्थ। और उनका सबसे बड़ा क्वालिटी था भक्तिविनोद ठाकुर का कि रात को 8 बजे सो जाते थे, स्लिप जल्दी सो जाते थे और उठ जाते थे 12 बजे। बरे बरे, दिस इज वेरी गुड। अगर आप 8 से 4 रात को सोते हो ना, तो आपको 20 घंटे काम कर सकते हो बिना थके, कुछ नहीं होगा ये टाइम में अगर आप सोते हो तो, 8 to 12, क्योंकि आपके आयुर्वेद के अनुसार 12 बजने के पहले का जो टाइम होता है उस समय अगर आप जब सोते हो तो आपको 1 घंटा सोते हो तो आपको 2 घंटे की नींद मिलती है इस समय में 8 से 12, तो अगर आप 4 घंटा सोते हो तो आपको 8 घंटे की नींद मिलती है, और जो 8 घंटे की नींद जो होती है वो आइडियली 6 से 7 में हम संतुष्ट हो जाते हैं। 8 घंटा तो बहुत है, 8 घंटा तो बहुत ही है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग 12 बजे तो सोता शुरू करते हैं, तो फिर 8 बजे तक हमारा काम खत्म ही नहीं होता, 7-8 बजे तक, और दिन में फिर दिन में भी थोड़ी थोड़ी हल्की सी नींद आती रहती है, 6 घंटा अगर सोते हैं, अगर थोड़ा भी कमजोरी है तो ये समस्या होती है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सभी गृहस्थ भक्तों के लिए कि हो सके उतना जल्दी सोने का प्रयास करें। ये हमारा व्यवस्था है कि हम ये अपना जो सत्संग कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं आपके साथ, उसका समय इससे अधिक जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि समय पूरा शहर का लाइफ ही इस प्रकार का है, ये सिटी का लाइफ, कि इसमें 7-8 बजे से पहले तो कोई फ्री होता नहीं, लेकिन द बेस्ट लाइफ इज दिस, अगर आप जल्दी सो जाते हैं और आधी रात को उठ जाते हो, जिसको आधी रात नहीं बोलते उसको मॉर्निंग ही बोला जाता है, जो 1 बजे उठते हो ना तो वो आधी रात को 1 बजे उठे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो सुबह 1 बजे उठ गया ऐसा बोलना चाहिए, सुबह 1 बजे उठ गया उस समय जप करो, रात को 1 बजे उठ कर गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, यू गेट बेस्ट क्वालिटी चैंटिंग। मैं किया है कई बार ऐसे, आई हैव डन दिस मेनी टाइम्स, रात को 2 बजे चैंटिंग, 2 से 4, फिर वो जो अपना बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कुछ आप ये सोच के कार्य कीजिए कि आप सितारे मत बनिए, तारे मत बनिए, आप चंद्रमा बनने का प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए कि जैसे भौतिक जगत में कैसा होता है, सब लोग को कुछ हटके करने का इच्छा होता है ना, कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, एम्बिशियस, इसको अच्छी भाषा में बोलते हैं एम्बिशियस आदमी है। एम्बिशियस का अर्थ क्या है, कुछ ग्रहण करो, कुछ प्राप्त करना चाहो, बैठ नहीं सकते शांति से, उसको कुछ चाहिए, उसको कुछ ग्रहण करना है, वो बड़ी चीज को ही देखता है, छोटी चीज नहीं देखता ना, उसको बड़ा कुछ प्राप्त करना है। धन कमाता है तो वो भी नहीं सोचेगा भाई मेरा भौतिकवादी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ एम्पायर का ही सोचेगा, मेरा एम्पायर होना चाहिए, कम लोग होते ऐसा सोचने वाले, लेकिन हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे सोचने वाले भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, क्या कि संपूर्ण जेंटलमैन, परफेक्ट, श्रेष्ठ जेंटलमैन, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। सो प्रभुपाद चैतन्य चैतन्य लिखते हैं, उसका श्लोक है, आपने आचार्य के है ना करे आचार, प्रचार करे ना के है, अपना आचार्य कर आचार्य के है ना करे प्रचार, प्रचार करे ना के है ना करे आचार, आचार प्रचार करे दुई कार्य, तुम्हें जगत तेरे गुरु, तुम्हें जगत तेरे आर्य। सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप आचार और प्रचार दोनों कर रहे हैं, इसलिए आप जगत एक गुरु के समान है। कुछ लोग आचरण करते लेकिन प्रचार नहीं करते, कुछ लोग प्रचार करते लेकिन आचरण नहीं करते, ये समस्या तो है ही ना हमारे लाइफ में भी, अगर आप देखिए तो ये समस्या तो हम देखते ही है। हम लोगों को कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जब हम जानते हैं कि ये करना चाहिए तो फिर हम क्यों नहीं करते, और ये समस्या इसीलिए तो 10वां नाम अपराध बना, आई मीन दसवां अनुवाद यही तो है कि सब महिमा जानने के पश्चात भी कि हरि नाम का इतना महिमा है, भगवान का चैतन्य महाप्रभु की कृपा का इतना महिमा है, फिर भी आप गंभीर नहीं बन पाते कृष्ण भक्ति में, या नहीं बन पाते बोलना तो अलग है, एक्चुअली नहीं बनते हम, फिर भी विषय में आसक्ति बनी रहती है और हमने हार मान ली है विषयों से, सरेंडर कर दिया, बस हमसे कुछ नहीं होगा, सॉरी हमसे कुछ नहीं होगा, हार मान लिया, माया जी तुम जीत गए, तुम जैसा बोलो वैसा हम करेंगे। भक्त लोग कभी हार नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में जो जनरली हार मानना पसंद नहीं करते, तो क्षत्रिय मेंटेलिटी भी होती है कुछ लोग की, हार नहीं मान सकते हो, पराजय पसंद नहीं होता। पराजय किसको पसंद होता है? पराजय कि आप पराजित हो गए, किसको पसंद होता है? किसी को नहीं पसंद है पराजय। तो फिर माया के सामने क्यों पराजित होना है? माया के सामने पराजित क्यों होना है? अगर माया के सामने पराजित नहीं होना है तो गिरो फिर खड़े हो जाओ फिर करो, गिरो फिर खड़े हो जाओ फिर करो, लेकिन पराजय मत मानो। तो इसलिए हमें प्रचार भी करना है और आचरण भी करना है, और आचरण करेंगे तो भगवान भी कृपा करेंगे। भगवान देखते हैं कि इस भक्त के हृदय में क्या चल रहा है, बहुत छोटी छोटी बात को भगवान नोटिस कर लेते हैं। एक्चुअली उनके लिए नोटिस करना क्या है, वो तो आपके हृदय में ही बैठे, आपकी सारी बात हो जानते हैं, आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किससे क्या कहते हो, मन में क्या चल रहा है, कौन से विचार आपके मन में है, तो ये तो कोई उनके लिए कौन सी छिपी बात है, वो तो आपके साथ ही आपके मित्र है, आप उनको दूर जब भेजना चाहो तो दूर तो जा नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपको छोड़ के जाए कैसे। अभी अभी हमने जो सॉन्ग गाया था उसमें था कि तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए तो मैं उतार लिया, तुम्हारे लिए तो मैं होइनो अवतार, तुम्हारे लिए तो उतार लेता हूँ, आमी बिना बंधु आर क्या छे तुम्हारा, और मेरे बिना तुम्हारा और कोई बंधु है भी क्या, कोई है क्या तुम्हारा कोई मित्र है ना, मेरा है एक फ्रेंड है, एक वो फ्रेंड है, अच्छा तुम्हारा मित्र है, हाँ मेरी पत्नी है, मेरे पति है, अच्छा वो तुम्हारे बड़े घनिष्ठ मित्र है, हाँ बड़े अंतरंग होते हैं, पति पत्नी का संबंध बड़ा अंतरंग होता है ना, तो बड़ा अंतरंग होता है, लेकिन क्या वो कितना समय आपके साथ रहेंगे, कितने समय तक आपके साथ रहेंगे, ये शरीर तक, जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा फिर क्या। इसलिए मैं शाम को एक सॉन्ग सुन रहा था, विद्यापति ने गाया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हे कृष्ण कृपा करके मेरा मति जो है, मेरा मन जो है वो हमेशा आपके चरणों में रखना, अगर मुझे दूसरा जन्म लेना भी पड़े, क्योंकि मेरी में ऐसी तो कोई योग्यता है नहीं कि मैं इसी जन्म को सफल बना करके भगवान के आपके चरणों में स्थिर हो जाऊं, तो मुझे अगर दूसरा जन्म लेना पड़े, कर्म विपाक है मैं लेना पड़े, तो आपके चरणों में मेरा मति रहे, ऐसा कृपा, ऐसा थोड़ा कृपा दान दे देना, मैं आपको कभी भूलू नहीं। जनरली भक्त लोग यही वरदान मांगते भगवान से, हर एक वैष्णव, कि मैं प्रयास कर रहा हूं आपको प्रसन्न करने के लिए, मैं प्रयास कर रहा हूं आपकी सेवा करने के लिए, मैं प्रयास कर रहा हूं, जैसे मेरे गुरुजी ने बोला कि ये करो ये करो, मैं वो सब करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं आपको प्रसन्न कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो केवल प्रयास कर रहा हूं, अभी सफलता विफलता तो आपके हाथ में है, तो मुझे ये नहीं पता कि आप मुझसे प्रसन्न होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे प्रसन्न हो या ना हो, कम से कम एक आशीर्वाद तो आप मुझे दे ही सकते हैं, ऐसे मान लीजिए कि ये तुच्छ है, दास है, इसके ऊपर कृपा करना पड़ेगा, ये बड़ा पतित है, इसको कोई मेरे अलावा इसका कोई आधार नहीं है, कोई इसका रक्षक नहीं है, कोई पालक नहीं है, तो क्या करेगा ये? तो ये मान करके इतना एक आशीर्वाद दे देना क्या कि मेरा मति जो है वो आपके चरणों से दूर ना हो, बस बाकी तो सब संभाल लेंगे ना। बाकी चाहे आप किसी के घर में फेंक दो, किसी 84 लाख में कहीं पर भी घुमाओ, कर्म के आधार से भगवान क्या घुमाएंगे, हम अपने कर्मों से हम खुद ही घूम रहे। तो जहां पर भी भेजो, जहां पर भी मैं जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस इतना एक छोटा सा फेवर कर देना। लेकिन ये जन्म जन्म की बात नहीं, इस जन्म में भी चाहिए ये फेवर। मेरा जो मन है वो आपके चरणों से कभी दूर ना जाए, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है कि जब कभी भी मैं आपके चरणों से मेरे मन को हटाता हूं तो मेरे सामने समस्याओं की सुनामी आ जाती है। या तो मैं कभी कोई उल्टे सीधे काम कर बैठता हूं, या कभी काम के प्रभाव में आ जाता हूं, या कभी क्रोध के वश में आ जाता हूं। अगर हम काम के वश में आते हैं, क्रोध के वश में आते हैं, लोभ के वश में आते हैं, तो एकदम इसका सीधा कैलकुलेशन है, सीधा कैलकुलेशन कि कृष्णा आपके मन से हट गए, कृष्णा आपके मन से हट गए तो आपको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का सामना कर पड़ रहा है। अगर आपको भौतिक आकर्षण सता रहा है तो इसका अर्थ है कि कृष्णा आपके मन में अभी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ऐसा प्रार्थना करना अच्छा है कि मैं आपको कभी भूलू नहीं, अगर भूलता हूं तो समस्या आ जाती है, शरीर खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है। आप कहेंगे प्रभु जी अब तो क्या करें, तो भौतिक संसार है, तीन ये सब प्रकार के दुख तो सबको आने ही है, शरीर भौतिक शरीर है तो दुख तो आएगा। भौतिक शरीर दुख तो आएगा, लेकिन अगर कृष्ण मन में है ना तो वो दुख आपको बाधा नहीं बनेंगे। वो भौतिक जो शारीरिक जो कष्ट आता है ना, वो आपकी बाधा नहीं बनेंगे। भगवान की सेवा में आपकी कोई बाधा नहीं खड़ी करेंगे वो, ना माला का जप में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना सेवा में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कैसे हो सकता है? जब आपके मन में कृष्णा स्थिर होते हैं तब। अगर कृष्ण मन में स्थिर नहीं है अगर कृष्ण मन में स्थिर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होना ही है। इसलिए मैं हमेशा भक्तों को कहता हूं कि कभी ये मत सोचो कि अगर हल्का सा कोई समस्या आए तो उसको तो आपको इग्नोर करना सीखना चाहिए। इग्नोर करो, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप अगर शरीर से स्वस्थ नहीं हो फिर भी आप स्ट्रगल करो, नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप शरीर से स्वस्थ नहीं स्ट्रगल करो, कहने का तात्पर्य कि स्ट्रगल भौतिक शरीर में अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो मन को कृष्ण में लगा के रखो, बस फिर बाकी सब अपने आप होगा, बाकी सब अपने आप होगा और कुछ नहीं। आपको कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप होने लगेगा। करना क्या, केवल एक चीज। और कई बार कहते हैं प्रभु जी अब मैं बीमार हूं तो भगवान के मन में चित्त कैसे लगा सकता हूँ? कौन बता रहा था मुझे, कल ना परसों कोई बता रहा था कि अस्पताल में एक लड़का मुझे मिला था, वो बताया कि मुझे कल अस्पताल में एडमिट होने का है, तो मैं आज सोलह माला आज का और कल का भी सोलह माला आज ही कर लेता हूँ एडवांस में, और कल का भी आज ही कर लेता हूँ। मैं कल का भी आज 32 कर लेता हूँ। तो मैंने कहा क्यों, कल हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो फिर मैंने उसको कहा अच्छा विचार है, 32 करना है तो वेरी गुड, आज 32 कर लो फिर कल 16 कर लेना। तो तो वो बोले कि लेकिन हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है। हाँ देखो ये है माया का ट्रिक, माया ट्रिक किया आपसे, हॉस्पिटल में माला कैसे हो सकता है, हॉस्पिटल में क्या, हॉस्पिटल में क्या आपका आपको बेहोश बना के छोड़ेंगे हमेशा। बोले एनेस्थीसिया देंगे। मैंने कहा एनेस्थीसिया कितने घंटे देंगे आपको, 24 घंटे एनेस्थीसिया दे, ऐसी कौन सी सर्जरी करा रहे हो आप। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको मन कृष्ण में लगा दो फिर आपका काम अपने आप सरल हो जाता है। और यही है उन्नत भक्तों का लक्षण। एडवांस भक्त का डेफिनेशन बड़ा आसान है। अब बोलना एडवांस, हमें एडवांसमेंट करना है भक्ति में, तो एडवांसमेंट क्या है, जिसका मन कृष्ण में लगा है वो एडवांसमेंट है, जो निरंतर कृष्ण चिंतन में लगा है वही एडवांस डिवोटी है। अधिक समय जितना ज्यादा उतना एडवांस डिवोटी। प्रभुपाद एक परपट में लिखा है, बेटर देन द ब्राह्मण हु नोज द पर्पस ऑफ द वेदास इज हु इज ही हु कैन डिसिपेट ऑल डाउट्स। फिर और एक लक्षण बताया है कि ब्राह्मण से वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जो सब प्रकार की शंकाओं का नाश करे। एंड बेटर देन हिम इज वन हु स्ट्रिक्टली फॉलोज ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स। और उससे भी अच्छा वो व्यक्ति वो है कि जो ब्राह्मण के बताए गए सिद्धांतों का पालन करे। बेटर देन हिम इज वन हु इज लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन। और उससे भी अच्छा व्यक्ति वो माना जाता है कि जो सब प्रकार के भौतिक कर्मसों से अपने आप को मुक्त कर देता है या मुक्त हो गया है। और उससे भी महान व्यक्ति, बेटर देन हिम, उससे भी अच्छा व्यक्ति वो माना जाता है हु इज अ प्योर डिवोटी, जो शुद्ध भक्त है, हु एग्जीक्यूट्स डिवोशनल सर्विस विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड्स, जो किसी लाभ की कामना किए बिना कृष्ण भक्ति में अपने आप को नियुक्त करता है, सामने किसी लाभ की कामना नहीं करता। बड़ा सिंपल है कृष्ण भक्त। सुदामा गए थे वहां पर भगवान के धाम में द्वारका में, तो भगवान ने सामने से पूछा कि पता था ना क्यों आए, वो तो पता था, वो तो अंतर्यामी भगवान तो जानते ना, पता था। तो जनरली होता है ना स्त्रियों का स्वभाव, तो सुदामा की पत्नी ने बोला था ऐसा, तुम्हारा मित्र है जाओ ले आओ पैसा। गरीब थे ना वो, धन की कमी थी। सुदामा ने बोला नहीं नहीं मैं आज तक कभी उनके पास गया नहीं इस तरह से, तो बोले ऐसे कैसे, ऐसे में कैसे जाऊं। तो उनकी पत्नी ने उनको हट करना शुरू कर दी कि नहीं, होता जनरली गृहस्थों में ऐसा होता ही है, पत्नी हट कर दी देती है और पति जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बुरा मत मानना, लेकिन ये वैदिक कल्चर में ऐसा ही होता है कि पति ज्यादा समझदार हो सकता है। तो सुदामा ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा जरूर, जब तुमने बोला है तो जरूर, भगवान का कोई इच्छा होगा इसके पीछे तो मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन मन से सोचा कि मैं मांगूंगा कुछ नहीं, भगवान से मांगने थोड़ी जाऊंगा मैं। कैसा लगता है भगवान के पास जाओ और कुछ मांगो, हाउ यू फील सो, कितना डिस्कम्फर्ट वाला है ये, अभिमान के कारण नहीं। अरे भाई देने वाली सारी चीज तो दे ही रहे ना, इसमें मांगने वाली क्या बात है। आपने तो मांगा नहीं था ना हवा पानी खाना पीना, आपने तो मांगा नहीं था तो दे तो रहे, आपको जो कंफर्ट है वो तो सब दे तो रहे भगवान, और क्या आपको, क्या और क्या, कौन सी ऐसी चीज है कि आपको मांगने की आवश्यकता पड़े, ऐसी कौन सी चीज है। नहीं मुझे, हाँ अब जब आपको आई वॉन्ट, अब मुझे ये चाहिए, तो फिर वहां पर शरणागति कैसे आई। एक जगह पर बता रहे हम कि मारो भी रखो भी जो इच्छा तो मार, नित्य दास प्रतीत हुआ अधिकार, भगवान हे प्रभु आपको मारना है तो मारो रखना है तो रखो, आपके दास के प्रति आपका पूरा अधिकार है, असली सेवा पाद रताम विनष्ट माम, ये सब हो सकता है ना असली सेवा। लेकिन फिर हम वहां फिर मांगने वाली बात कहां से आई। अगर मांगना ही है तो आप, मेरा मन जो है वो हमेशा आपके चरणों में स्थिर रहे, ऐसा मांगो। ये क्या फालतू का चीज मांगा, पैसा लेके पैसा नहीं है, निर्वाह नहीं हो रहा है हमारा। अरे निर्वाह नहीं हो रहा तो विश्वास रखो। श्रीवास ठाकुर बोले, चैतन्य महाप्रभु बोला कि तुम्हारा निर्वाह कैसे, तुम तो हमेशा भगवान की सेवा में लगे, तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा। और तीन ताली बजाई श्रीवास ठाकुर। महाप्रभु बोले कि ये क्या है, ये तीन ताली क्या है। तो कहा कि मैं पहले दिन वेट करूंगा कि भगवान मुझे मेरी आवश्यकता पूरी कर दे, दूसरा दिन वेट करूंगा, तीसरा दिन वेट करूंगा, तीन दिन तक अगर भगवान मुझे भूखा रखेंगे और मुझे मेरी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो चौथे दिन में गंगा में जाकर आत्महत्या कर लूंगा। चौथे दिन में गंगा में जाकर डुबकी लगा दूंगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कल से भी अनशन पे उतर जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य है श्रीवास ठाकुर का ये कि उनको भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है कि मेरी कोई किसी भी आवश्यकता की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चिंता होती है, दैट्स फाइन। आपकी चिंता होती है तो वो तो ठीक है, अगर आपको चिंता हो रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन चिंता के सामने आपको मन में ये विचार भी आना चाहिए कि कृष्ण सब ठीक कर देंगे। कृष्णा हमारे परम पिता है, रक्षक है, पालक है, तो वो बोला क्यों हमें प्रसन्न हो, आप भी प्रसन्न हो ये जान करके कि कृष्णा आपके भी मित्र है, आपको भी तो खुश होना चाहिए ना कि कृष्णा आपकी सहायता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ। तो सुदामा बिना कुछ मांगे वहां से वापिस आ गया। मांगो क्या चाहिए सुदामा, कुछ मांगना चाहते हो ऐसे आ गए तो कुछ कुछ तो होगा ना, मांगो क्या है। बोले नहीं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें, कोई सब कुछ सही चल रहा है घर पे, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। पत्नी ठीक है तुम्हारी, ठीक है। देख लो फिर सोच लो कुछ मांगना है तो ना देखो कुछ, तुम मित्र हो तुम मांगो तो मैं थोड़ी मना करूंगा कुछ भी। ना कुछ नहीं चाहिए। आर यू श्योर, एक बार सोच लो फिर से। बोले हाँ हाँ नहीं चाहिए कुछ, ठीक है मत मांगो। कृष्णा ने ऐसा नहीं बार बार में कृष्णा फिर चिंता करने लगे, ये मांग भी नहीं रहा है इसको क्या करूं, इसको देना चाहता हूं लेकिन दे भी नहीं सकता क्योंकि मांगने। भगवान बोले कोई बात नहीं, नहीं मांग रहे तो नहीं सही, फिर क्या, सिंपल सिंपल एज दैट। अब जब नहीं मांग रहे तो मैं क्यों दू। फिर अंदर हृदय में सोचे, नहीं तो मेरा प्रिय भक्त है, तो मेरा प्रिय सखा है, ये इसका भक्ति है, मैं इसके कारण इसका परीक्षा किया तो पास हो गया, ये तो बड़ा प्रसन्न हूं इससे। अब मेरे लिए कोई छोटी मोटा धन ऐश्वर्य देना तो क्या अच्छा वस्तु, ये तो क्या बड़ी बात। मैं अनंत को जो ब्रह्मांड का सर्जन करने वाला हूँ, 14 लोग मेरे इशारे से चलते हैं, हजारों ब्रह्मा दंडवत करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत धन स्वर्ग के इंद्र का अगर दे भी दिया तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है भगवान को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये सोचना चाहिए उस क्या नहीं है उनके पास, क्या नहीं दे सकते, क्या छोटी छोटी चीज मांग रहे आप, हल्का चीज चीप वस्तु है ये चीज, क्या ये कोई मांगने का तरीका है। मांगो ही मत, इससे अच्छा है कुछ मांगो ही मत। तो यहां पर क्या कहा है, वो भक्त जो शुद्ध है जो बिना किसी इच्छा से भगवान की सेवा कर रहे हैं, बिना किसी इच्छा से। तो इस प्रकार से हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, तब जाके भगवान हमारी ओर आकर्षित होंगे या हम पे प्रसन्न होंगे। और सेवा करना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। हमारी समस्या भक्तों में, हम कई बार अक्सर कहते रहते हैं इस बात को कि भक्त लोग सेवा बहुत कम करना चाहते हैं, या फिर उनके लिए सेवा की प्रायोरिटी अपने खुद ने बनाई है, सेवा पहली प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2। लेकिन सेवा हमें देखनी चाहिए कि ऐसी सेवा करें जिससे अधिक लाभ हो, ऐसी सेवा करें जिससे चलो प्रभुपाद के मिशन में सीधा लाभ हो, डायरेक्ट लाभ हो। इसमें हमारा स्वार्थ कम होना चाहिए। जैसे कई बार आपको भक्तों को कहा जाता है कि आप टेंपल में सेवा दीजिए। टेंपल में सेवा इसलिए कह रहे हैं बार बार क्योंकि टेम्पल में सेवा करने वाले भक्त कम है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप उनमें सेवा दीजिए। कई ऐसी संस्थाएं है, वो संस्थाओं में सब कार्य उनके श्रद्धालु लोग आके करते हैं, बाहर से सब कुछ। आपका ये गुरुद्वारा में देखो, सब कुछ सारा कार्य बाहर के लोग आके करते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि इस्कॉन सारे संसार विश्व को अगर उद्धार कर सके, इतना बड़ा नौका है, तो ये इस्कॉन तो सबसे उत्तम होना चाहिए ना, ये तो सबसे उत्तम होना चाहिए, सब संस्थाओं में सबसे अच्छा आदर्श बनाना चाहिए ना इसको, कि लोग बोले कि देखो इस्कॉन का उदाहरण देखो कितना अच्छा कर रहे। तो ये इस्कॉन कोई संस्था नहीं, वो तो आप ही इस्कॉन हो, आप लोग ही इस्कॉन हो। तो आप बताओगे कुछ करके, कुछ अच्छा करके दिखाओगे, तो लोग आपका उदाहरण बताएंगे, देखो इनका उदाहरण। तो आपको ये कार्य करना चाहिए, इस तरह से सेवा देना चाहिए। तो इस तरह से अधिक सेवा करेंगे और बिना किसी लाभ की इच्छा से वो शुद्ध भक्ति बन पाएंगे। तो यहाँ पर वो जो श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है तीसरे अध्याय का, इसमें तीसरे स्कंद का, इसमें ये लिखा था कि सबसे उत्तम होता है वो भक्त वैष्णव, जो भगवान की सेवा बिना किसी आशा से करता है। तो आगे आने वाले कुछ लेटर्स हम नेक्स्ट टाइम पूरे सब एक लेटर सारे साथ में पढ़ लेंगे, क्योंकि एक एक लेटर प्रभुपाद का बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वी स्टॉप हियर, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। Okay, so we stop.